اللہ کے خاص بندے۔
श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम श्रृंखला अल्लाह के खास बंदे की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में हजरत अली के जीवन की कुछ उतार चढ़ाव भरी घटनाओं की समीक्षा करेंगे।
आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने हुनैन युद्ध का उल्लेख करते हुए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुरक्षा में हज़रत अली की ओर से किए गए बलिदान का उल्लेख किया था। अपनी वार्ता को हम उसी से आगे बढ़ाते हैं।
तबुक वो सबसे दूरस्थ स्थल था जहाँ पर इस्लाम के प्रसार के उद्देश्य से पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले गए थे। आपके तबुक जाने के अवसर पर मुनाफिकों या मिथ्याचारियों की गतिविधियां और उस समय घटने वाली कुछ घटनाएं ये दर्शाती हैं कि वे पैगंबर इस्लाम की नवगठित सरकार को चोट पहुंचाने के प्रयास में थे। मिथ्याचारियों ने ये सोचा कि तबुक युद्ध पर जाने के कारण मदीने में पैगंबर इस्लाम नहीं रहेंगे और ये अवसर उनके लिए अपनी योजना को लागू करने के लिए बहुत ही उचित अवसर है। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि अपनी अनुपस्थिति में पैगंबर इस्लाम हज़रत अली अलैहि सलाम को मदीने में छोड़ जाएंगे। आपने हज़रत अली अलैहि सलाम से कहा था कि हम दोनों में से किसी एक का मदीने में रहना बहुत ज़रूरी है।
पैगंबर इस्लाम के आदेश पर हज़रत अली अलैहि सलाम मदीने में ठहरे, जिसके कारण मुनाफिकों की योजना विफल हो गई। अपनी योजना को विफल होता देखकर मुनाफिकों ने यह दुष्प्रचार आरंभ किया था कि पैगंबर इस्लाम के लाख कहने के बावजूद हज़रत अली ने उनकी बात नहीं मानी और वे तबूक युद्ध से बचने के लिए मदीने में रह गए। इस दुष्प्रचार के फैलते ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने सारी बातें उन्हें बताईं। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अली का महत्व ऐसा ही है जैसे हारून का मूसा के लिए। अंतर केवल इतना है कि मेरे बाद कोई ईश्वरीय दूत नहीं आएगा। इस प्रकार मुनाफिकों का षड्यंत्र पूर्ण रूप से विफल हो गया।
मक्के से मदीने पलायन करने के वर्षों बाद तक एकेश्वरवाद के समर्थन और अनेकेश्वरवाद के विरोध का प्रचार लगातार जारी था। ये संदेश अरब जगत के लोगों तक निरंतर पहुंच रहा था, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे थे। इसके बावजूद कुछ उद्दंडी स्वभाव के लोग एकेश्वरवाद का विरोध व अनेकेश्वरवाद का समर्थन कर रहे थे। अब पैगंबर इस्लाम ने ये निर्णय लिया कि अनेकेश्वरवाद के समूल विनाश के लिए कार्यक्रम चलाया जाए, चाहे इससे अनेकेश्वरवादी नाराज ही क्यों न हों। इस काम के लिए आपने हज जैसे पवित्र इबादत का सहारा लिया। इस्लाम के उदय काल में हज के दौरान इसमें भाग लेने वाले अज्ञानता के काल की कुछ परंपराओं को यहाँ पर अंजाम देते थे जो इस्लामी शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। पैगंबर इस्लाम चाहते थे कि हज जैसी पवित्र उपासना हर प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहे। इसके लिए ईश्वर के घर को सभी बुराइयों से स्वच्छ करना था।
इन्हीं बातों के दृष्टिगत पैगंबर इस्लाम ने सूरह तौबा की आरंभिक आयतों को सुनाने के लिए हज़रत अबू बकर को एक गुट के साथ मक्के भेजा। वे लोग अभी कुछ दूर ही गए थे कि ईश्वरीय फरिश्ते ने आकर पैगंबर इस्लाम को ये संदेश सुनाया कि बराअत का संदेश या वे स्वयं सुनाएं या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य जाकर उसे सुनाए। इसके बाद आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे कहा कि तुम घोड़े पर सवार होकर मक्का जाओ और मुशरिकों के सामने बराअत की आयतें पढ़कर सुनाओ।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूरी दृढ़ता के साथ ऊंची आवाज़ में आयतों को पढ़ा। इन आयतों का खुलासा इस प्रकार था। मूर्ति पूजक अब के बाद से ईश्वर के घर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। काबे के आदर और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। अब कोई बिना कपड़ों के तवाफ नहीं कर सकता। अब से कोई भी अनेकेश्वरवादी हज के संस्कारों में भाग नहीं ले सकता। अनेकेश्वरवादियों के पास अब 4 महीने का समय है कि वे मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दें और इस्लामी सरकार के सामने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
इस घोषणा के कुछ ही समय के बाद से अनेकेश्वरवादी गुट गुट में एकेश्वरवादी बनते चले गए। 10वीं हिजरी कमरी तक तत्कालीन अरब जगत में अनेकेश्वरवाद दम तोड़ चुका था और एकेश्वरवाद का हर ओर बोलबाला हो चुका था। इस प्रकार इस्लाम के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक और प्रयास सफल हुआ।
इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काल के कई राष्ट्राध्यक्षों और गणमान्य लोगों के नाम पत्र लिखे। जिन लोगों को आपने पत्र लिखे थे उनमें से एक नजरान का ईसाई धर्मगुरु भी था। वो हिजाज और यमन की सीमा पर रहता था। पैगंबर इस्लाम ने उसे इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। उसके प्रतिनिधि ने यह खत उस ईसाई धर्मगुरु के हवाले किया। उसने पैगंबर इस्लाम के खत को बहुत ध्यान से पढ़ा। बाद में ईसाई धर्म के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद ये तय पाया कि 60 चुने हुए लोगों को पैगंबर इस्लाम की सेवा में मदीने भेजा जाए। ये लोग निकट से उनसे मिलकर उनके ईश्वरीय दूत होने के तर्कों की समीक्षा करें।
जब ये लोग मदीना पहुँचे तो उन्होंने तार्किक बातों के स्थान पर बहस शुरू कर दी और इस्लाम लाने से इनकार कर दिया। इसी बीच ईश्वर का फरिश्ता मुबाहले की आयत लेकर पैगंबर के पास आया। इसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष अपने निकट संबंधियों को लेकर आए और हाथ उठाकर झूठे पर लानत भेजें। उन लोगों ने पैगंबर इस्लाम के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुबाहले में भाग लेने की बात मान ली।
मुबाहले के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था वहां पर पैगंबर इस्लाम अपने परिजनों के साथ पहुंचे। पैगंबर इस्लाम की गोद में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इमाम हसन की उंगली पकड़ रखी थी। हजरत अली और हजरत फातिमा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नजरान के जो ईसाई मोबाइले के लिए मदीने आए थे उन्होंने मोबाइले से पहले आपस में ये कहा था कि मोहम्मद अगर सांसारिक वैभव के साथ आते हैं तो वे फिर ईश्वर के दूत नहीं हैं, लेकिन अगर वे पूरी सादगी से आते हैं तो वे वास्तव में ईश्वरीय दूत हैं।
अभी ईसाइयों का शिष्टमंडल आपस में ये बातें कर ही रहा था कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम को उनके पवित्र परिजनों के साथ आते हुए देखा। इन 5 लोगों के मुख से निकलने वाले तेज को देखकर वे सब हैरान रह गए। वे लोग ये सब देखकर अचंभित थे। इसी बीच ईसाइयों के शिष्टमंडल के प्रमुख ने कहा कि जिन चेहरों को मैं देख रहा हूँ यदि वे अपने हाथ दुआ के लिए उठाएं तो हमारा विनाश हो सकता है। उचित ये होगा कि हम मुबाहला न करके वापस चले जाएं। उन्होंने अपने निर्णय से पैगंबर इस्लाम को अवगत करवाया और उन्होंने ईसाइयों की बात को स्वीकार कर लिया। मुबाहला की घटना पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के सच्चे होने की पुष्टि करती है। ये इस्लामी इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इससे संबंधित आयत का सारांश ये है कि मुबाहले के लिए पैगंबर इस्लाम के साथ आने वाले लोग किस दर्जे के थे।
मुबाहले का निमंत्रण पैगंबर इस्लाम की सच्चाई का एक अन्य स्पष्ट चिन्ह है, क्योंकि ये बात संभव नहीं है कि जिसे अपने पालनहार से संबंध पर पूर्ण विश्वास न हो वह इस प्रकार के मैदान में आए और अपने विरोधियों को निमंत्रण दे कि वे ईश्वर से झूठे को दंडित करने की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से ये अत्यंत खतरनाक काम है, क्योंकि यदि उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार न हो और विरोधी ईश्वरीय दंड में ग्रस्त न हो तो इसका परिणाम उसके घोर अपमान के रूप में ही निकलेगा। कोई भी बुद्धिमान एवं दूरदर्शी व्यक्ति परिणाम पर पूरे विश्वास के बिना ऐसा काम नहीं करेगा।
यही कारण था कि जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहला के मैदान में आए तो नजरान के ईसाई उन्हें देखकर, जो बिना किसी ठाट बाट के केवल अपने नातियों इमाम हसन और इमाम हुसैन, सुपुत्री हज़रत फ़ातिमा और दामाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ आए थे, अत्यधिक भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत संधि पर अपनी तत्परता जता दी, क्योंकि वे अपने हृदय की गहराइयों से पैगंबर इस्लाम की सच्चाई को समझ चुके थे।
इस्लाम के प्रसार और उसके प्रभाव के कारण पैगंबर इस्लाम ने एकेश्वरवाद को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया। इसी उद्देश्य आपने अपने एक साथी मुआज बिन जबल को यमन भेजा। वे एकेश्वरवादी संदेश के साथ यमन गए ताकि यमन वासियों को इससे भली भांति अवगत करवाया जा सके। यमन पहुंचने के बाद मुआज ने वहां के लोगों को संदेश बताने और इस्लामी शिक्षा देने के लिए भरसक प्रयास किए, किंतु वे इस काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके।
अंततः वे मदीना वापस आ गए। इसके बाद इसी उद्देश्य से पैगंबर इस्लाम ने खालिद बिन वलीद को यमन भेजा। खालिद बिन वलीद ने भी यमन में 6 महीने गुजारे और अपना काम जारी रखा, किंतु वे भी प्रभावी काम नहीं कर सके और मदीना वापस आ गए। अंततः पैगंबर इस्लाम ने इसी उद्देश्य से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को यमन रवाना किया। हज़रत अली को यमन रवाना करते समय उन्होंने दुआ की थी कि तुम वहाँ के लोगों के साथ तार्किक व्यवहार करते हुए उनका सही मार्गदर्शन करो।
जिस समय हज़रत अली अलैहिस्सलाम यमन की सीमा पर पहुँचे तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सबसे पहले सुबह की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ी। उसके बाद हज़रत अली ने यमन के हमदान कबीले के लोगों को पैगंबर इस्लाम का पत्र सुनने के लिए आमंत्रित किया। हमदान कबीला उस समय यमन का सबसे बड़ा कबीला था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए अपनी बात पूरे तर्क के साथ पेश की। हज़रत अली की बातों से वहां पर उपस्थित लोग बहुत प्रभावित हुए। यमनवासी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बातों से इतना अधिक प्रभावित हुए कि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में यमनवासी मुसलमान हो गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस घटना की सूचना पत्र के माध्यम से पैगंबर इस्लाम तक पहुंचाई। इस पत्र को पढ़कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो गए।